हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा। तो आज के इस परम पवित्र दिवस पे 13 जुलाई को जिस दिन प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की, आज के दिन शाम की सभा में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी का हमारे ऊपर बहुत ऋण है, उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि जिनको बहुत कुछ मिलता है उन पर जिम्मेदारी भी बहुत होती है। तो हु मच इज़ गिवन मच इज़ एक्सपेक्टेड। तो हम लोगों ने अकारण कृपा का लाभ लिया है प्रभुपाद जी से, इसलिए हमको हमारे ऊपर उत्तरदायित्व यह है कि हम वो कृपा लोगों तक भी पहुँचाएँ एक पोस्टमैन की तरह। तो पंढरपुर का महात्म्य हम आगे चलाते हैं। ये महाराष्ट्र का परम श्रद्धा स्थान है, और जैसे मैंने सुबह बताया भागवत धर्म का ये आद्य पीठ है, यहाँ पर भागवत धर्म का प्रचार हुआ है। ये महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी है, क्योंकि यहाँ पर द्वारका से भगवान आए इसलिए उसको दक्षिण द्वारका भी कहा गया है। पुंडरीक के नाम पर इसको पुंडरीकपुर भी कहा गया है। एक भक्त के नाम पर पूरा राज्य पूरा प्रदेश भगवान ने बना दिया है। इसको पांडुरंग पल्ली भी कहते हैं, इसको पंढरी भी कहते हैं, और पंढरपुर ये नाम पुंडरीकपुर इस नाम का ही अपभ्रंश हो गया है आगे जाकर। तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मणियामा अनाथा कारणे पंढरी निर्माण के लिए देवे। थोड़ा सा आवाज कम कर देना पुरुष, थोड़ा सा। कितना नम्र भाव है उनका। तुकाराम महाराज इतने श्रेष्ठ संत थे, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग अनाथ हैं। अनाथ यानी माता पिता तो हैं, लेकिन जब तक भगवान नाथ नहीं बनते हम सब लोग अनाथ रहते हैं। तो ऐसे अनाथों के लिए, हमारे के लिए, हमारे लिए भगवान ने स्वयं ये पंढरी का निर्माण किया है, हम सबका उद्धार करने के लिए। इस प्रकार का नाम का गजर यानी कि नाम का उच्चारण, नाम ध्वनि, नाम गुंजारव, इस प्रकार के संत जो हरिदास हैं भगवान के, इस प्रकार के भगवान जो ईंट पर खड़े हैं, इस प्रकार की चंद्रभागा कहाँ मिलेगी, ऐसे तुकाराम महाराज बोलते हैं। अपना जो हृदय का कृतज्ञ भाव है वो अर्पण करते हैं पांडुरंग के चरणों में। वो कहते हैं कि पंढरपुर में ढूंढकर भी दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुख का आगर है। यहाँ पर आकर सारे दुख पीड़ा कष्ट यातना सब नष्ट हो जाते हैं। एक सुंदर बात तुकाराम महाराज बताते हैं कि सुख का भंडार है यहाँ पर, मन और इंद्रियां पूर्ण सुख का अनुभव करती हैं, और यहाँ पर आकर संतों के गले मिलने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक दूसरे को बड़े प्रेम से मिलिए, आलिंगन दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भक्तों के आलिंगन देने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। पंढरपुर जो है वो एक आधा योजन लंबा है, यानी कि एक योजन 8 मील का होता है, तो ये 4 मील का लंबा और उससे आधा यानी 2 मील का चौड़ा है, स्कंद पुराण में लिखा है। और ये गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में स्थित पवित्र धाम है। वैसे गंगा यमुना के बीच में बहुत सारे तीर्थ हैं, उसमें ये भी पंढरपुर का क्षेत्र है। एक बहुत अद्भुत बात यहाँ पर पुराण में लिखी गई है कि प्रभु रामचंद्र जब सीता को खोजने के लिए दक्षिण की ओर जा रहे थे तो पंढरपुर से ही निकले हुए हैं। पंढरपुर में प्रभु रामचंद्र के चरणों का स्पर्श त्रेता युग में हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पंढरपुर तभी पंढरपुर नहीं था, कुछ अलग नाम था उसका। उसका नाम था दिंडीरव वन, लोहदंड वन, तिंडिर वन, ऐसे उसके अनेक नाम थे। तिंडिर वन इसका मतलब है चिंस यानी कि इमली। इमली के यहाँ पर बहुत पेड़ हुआ करते थे, इसलिए उसको तिंडिर वन भी कहा गया है। और तिंडिर वन की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। ద్విభుజం విఠలం విష్ణుం భుక్తి ముక్తి ప్రదాయనం, ఐసె పద్మ పురాణ మే కహా గయా హై. యహాన్ పర్ జో చతుర్భుజ విష్ణు హై వో ద్వారకాధీశ్ కే రూప్ మే దో భుజా మే ఆతే హై, కృష్ణ కే రూప్ మే మథురా మే దో భుజా మే ఆతే హై. తో వో భగవాన్ యహాన్ పర్ భుక్తి యానీ కి మన్ ఔర్ ఇంద్రియో కా సుఖ ఔర్ ముక్తి యానీ ఆత్మా కా జన్మ మృత్యు సే పలాయన్, యే దోనో దేనే కే లియే ఆతే హై. హమ్కో సమజ్నా జరూరీ హై కి మన్ కో ఔర్ ఇంద్రియో కో సంతుష్టి సమాధాన్ మిలే బినా భజన్ ఠీక్ సే నహీ హోతా హై. భోగ్ తో చాహియే హీ లేకిన్ వో భోగ్ అగర్ భగవాన్ కే సంబంధ మే హోగా తో వో మన్ ఔర్ ఇంద్రియో కో సంతుష్టి దేతా హై. అగర్ వో స్వార్థ కే హేతు పానే కా హమ్ ప్రయాస్ కర్తే హై తో వహీ భోగ్ హమే దుఃఖ దేతా హై, చింతా ఉత్పన్న కర్తా హై, పీడా ఉత్పన్న కర్తా హై, ఆగే కే కర్మ బంధన్ భీ ఉత్పన్న కర్తా హై. ఇస్లియే మన్ ఔర్ బుద్ధి కో మన్ ఔర్ ఇంద్రియో కో భోగ్ దేనా జరూరీ హై. ఔర్ జబ్ తక్ మూలభూత్ సంతుష్టి మన్ ఔర్ ఇంద్రియో కీ హోతీ నహీ హై తబ్ తక్ భగవాన్ కీ భక్తి ప్రాప్త నహీ హోతీ హై. తో యహీ ఇస్ ప్రకార్ కీ భుక్తి జో ఇంద్రియో కో మన్ కో ఆవశ్యక హై వో భీ పాండురంగ దేతే హై. ఔర్ జో ఆత్మా కో భగవత్ నామ్ మే ఔర్ భగవత్ సేవా మే రుచి హోనీ చాహియే వో భీ పాండురంగ దేతే హై. ఔర్ ఇస్కే బాద్ మే భగవత్ సేవా కీ రుచి దేనే కే బాద్ జన్మ మృత్యు కీ జో చక్ర హై ఉస్సే ముక్తి భీ పాండురంగ దేతే హై. భగవాన్ శంకర్ పార్వతీ కో బతాతే హై పద్మ పురాణ మే కి పృథ్వీ పాతాల్ ఔర్ ఆకాశ్ ఇన్ తీనో జగహ పర్ పండర్పూర్ కే బరాబర్ కా కోయి క్షేత్ర నహీ హై. సకల తీర్థావుని తుకారా మహారాజ్ కేతే హై, సకల తీర్థావుని పండరి హే ముకుటమణి రమావల్లభ జేతే ఉబా కాయ సాంగో తే తిల శోభా. వో కేతే హై కి సబ్ తీర్థోం కా యే తీర్థ జో హై ముకుటమణి హై, క్రౌన్ జ్యువెల్, క్రౌన్ క్యా కేతే హై ఉస్కో, క్రౌన్ ముకుటమణి. యే మూర్తిమంత ఆనంద స్థాన హై, వ్రత తీర్థయాత్ర దాన తప యజ్ఞ కర్కే భీ జో ప్రాప్త నహీ హోతా హై వో కేవల్ యహాన్ పర్ ఆకర్ విఠల్ కా దర్శన్ కర్నే సే ప్రాప్త హోతా హై. సాక్షాత్ దేవతా లోగ్ భీ యహాన్ పర్ ఆనే కో తడపతే హై, బహుత్ కష్ట కర్తే హై, బహుత్ మెహనత్ కర్తే హై యహాన్ పర్ ఆనే కే లియే, క్యోంకి యహాన్ పర్ ఆనా ఇత్నా ఆసాన్ నహీ హై. యహాన్ పర్ ఆనే కే లియే ఏక్ తో సబ్సే బడీ ఇచ్ఛా హోనీ చాహియే భగవాన్ కా దర్శన్ కర్నే కీ, ఔర్ దూసరీ హమారే కర్మ జో హై ఉస్కే లియే యోగ్య హోనే చాహియే, హమారీ మతి ఉస్కే లియే అనుకూల్ హోనీ చాహియే, తబ్ జాకర్ ఇస్ ధామ్ కా దర్శన్ హోతా హై. జైసే మైనే సుబహ్ కహా థా జన్మ మృత్యు కీ జో చక్ర హై యహాన్ పర్ ఆకే మిట్ జాతా హై ఔర్ వైష్ణవో కో మిల్నే సే సారే దుఃఖ నష్ట హో జాతే హై. ఏక్ బాత్ ధ్యాన్ రఖనా జరూరీ హై, అగర్ హమ్ లోగ్ అంజానే మే భీ పండర్పూర్ కే బారే మే కుచ్ బురా కహతే హై తో హమే కిసీ భీ తీర్థ ఔర్ యాత్రా కర్నే సే కుచ్ భీ లాభ నహీ మిలేగా. जैसे कार्तिक के बारे में कहा गया, कार्तिक का व्रत जो कोई करता नहीं है उसको बाकी कोई व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, करने पर भी नहीं होता है. उसी प्रकार से पंडरपुर का महात्म्य हम सुन रहे हैं, इसमें यह भी महत्वपूर्ण चीज़ है समझना, कभी भी अरे पंडरपुर में कितनी भीड़ होती है, क्या चिकल होता है, कुछ व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत चिकचिकाहट होता है, पसीना आता है, ऐसा हम लोग कभी कभी बोल सकते हैं. यहाँ पर कभी कुछ भी खाएंगे तो डायरिया हो जाता है, ऐसे कभी कभार अनजाने में हम बोल देते हैं, लेकिन हमको सावधानी पूर्वक पंडरपुर क्षेत्र के बारे में कभी भी कोई बुरा शब्द उच्चारण नहीं करना चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए. हाँ, अगर हमको इस जीवन के अंत में भगवान की कृपा चाहिए तो हमें पंडरपुर का केवल गौरव ही सोचना चाहिए. अभी एक रहस्य की बात आचार्य समझाते हैं, वो ये है कि जैसे वृंदावन धाम जो है वो हमें जाएंगे तो सुअर दिखाई पड़ता है, बंदर दिखाई पड़ते हैं, कभी आपका पर्स छीन लेता है, कभी काट लेता है आपको, तो बहुत मन में बुरे विचार आते हैं कि नहीं आएंगे इधर दोबारा. कभी कभी कोई पुजारी कोई गोसाई आपको लूट लेता है तो आपकी श्रद्धा उड़ जाती है. लेकिन ऐसे कहा जाता है कि श्री वृंदावन धाम जो आपको दिखता है उसके परे है, एक्चुअली जो दृश्य वृंदावन है वो कलयुग का प्रभाव से आपको दिखाई पड़ता है. लेकिन जो भक्ति के नेत्र होते हैं, जो दिव्य चक्षु होते हैं, उससे जो वृंदावन का दर्शन होता है वो कानों से होता है, एक्चुअली श्रवण से होता है. श्रवण से वो दिव्य वृंदावन की अनुभूति होती है और जब वो श्रवण करने से हम परिपूर्ण हो जाते हैं तो हमारे के नेत्रों से भी वो वृंदावन का दर्शन होता है, जिसको नित्य नित्य वृंदावन कहा गया है. निज धाम कहा गया है उसको। वैसे ही पंडरपुर में भी ऐसे ही सेम कंसेप्ट है, इसको कहते हैं त्रिपुरात्मक धाम। इसमें तीन मेन स्थान हैं, एक है श्री क्षेत्र जहाँ पर पांडुरंग भगवान स्वयं खड़े हैं, वो भी एक क्षेत्र है जहाँ पर पांडुरंग भगवान विट्ठल भगवान मूर्ति के रूप में खड़े हैं। एक है पुंडलिक तीर्थ जहाँ पर पुंडलिक का मंदिर है, और एक है लक्ष्मी तीर्थ जहाँ पर रुक्माबाई का मंदिर है, रुक्मिणी देवी का मंदिर है। ये तीन एक ट्राइंगल है, हाँ त्रिकोण है, और इस त्रिकोण के बीच में एक अदृश्य बिंदु तीर्थ है जहाँ पर आज कुछ नहीं है, मतलब हमारी आंखों को दिखाई पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि श्री वृंदावन धाम में 660 मिलियन यानी 66 बिलियन तीर्थ हैं, लीला स्थली है, लेकिन सब तो प्रकट नहीं है। हो सकता है कई ऊपर हम चलते भी होंगे, बिल्डिंग बनी होगी, हमारी गाड़ी चलती होगी। उस प्रकार से ये बिंदु तीर्थ यहाँ का जो है वो अदृश्य है आज के तारीख में, लेकिन वही यहाँ का दिव्य धाम है। इन तीनों मंदिरों के बीच का क्षेत्र जो है वो बिंदु तीर्थ, और इसमें दिव्य वृंदावन दिव्य वैकुंठ जो है वो छुपा हुआ है, और केवल जो उसको परम वैकुंठ गुप्त वैकुंठ कहते हैं, और जो परम शुद्ध संत हैं, साक्षात्कारी संत हैं, उनको इस बिंदु तीर्थ का दर्शन होता है और उस वैकुंठ का भी दर्शन होता है। ऐसे पद्म पुराण में लिखा है, ऐसा भी कहा गया है कि ऐसे बिंदु तीर्थ के बारे में अश्रद्धालु को और पापी व्यक्ति को वर्णन नहीं करना चाहिए। जैसे नाम अपराध में कहा गया है कि अश्रद्धालु को नाम की महिमा का वर्णन नहीं करना चाहिए, केवल आप शरीर नहीं है आत्मा है और भगवान परम पुरुषोत्तम है, उनका नाम जपना चाहिए, इतना ही बोलना चाहिए। उसी प्रकार से बिंदु तीर्थ का जो रहस्य है वो किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। इसके आगे हम चलेंगे तो पंडरपुर का क्षेत्र जो है उसको चार दिशा में चार प्रवेश है उसके, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। पूर्व प्रवेश में ब्रह्मा जी अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़ के रूप में विराजमान हैं। दक्षिण दिशा में सिद्धेश्वर, जिसके नाम से हमारी ट्रेन चलती है ना, सिद्धेश्वर एक्सप्रेस, वो सिद्धेश्वर दक्षिण दिशा में शिवलिंग के रूप में विराजमान है। फिर आप चलेंगे पश्चिम दिशा में, वहाँ पर भुवनेश्वरी देवी विराजमान है जो उस दक्षिण दिशा का रक्षा करती है, वो पश्चिम दिशा का रक्षा करती है। और उत्तर दिशा में भगवती दुर्गा देवी निवास करती है, और यहाँ पर केवल भीमा नदी नहीं है, यहाँ पर धर्मवीरा नदी है, यहाँ पर भरणी नदी है, यहाँ पर कई प्रकार की नदियाँ हैं, और यहाँ पर भरणी नदी भीमा देवी से संगम होता है। कहाँ पर? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार में। और चार अंतर द्वार भी है पंडरपुर को। पूर्व दिशा में त्रिविक्रम भगवान विराजमान है। त्रिविक्रम भगवान मतलब कौन? वामन देव, जिन्होंने तीन कदमों में त्रिभुवन को नाप लिया था। तो पूर्व अंतर द्वार में त्रिविक्रम भगवान विराजमान है, दक्षिण द्वार पर शंकर भगवान विराजमान है, पश्चिम द्वार पर लक्ष्मी देवी विराजमान है, और उत्तर द्वार में अंतर द्वार में नरसिंह भगवान विष्णु विराजमान है। और नैऋत्य दिशा में इस धाम के क्षेत्रपाल विराजमान है काल भैरव, इसकी भी आगे कथा आती है हम बताएंगे आपको। तो नैऋत्य यानी पश्चिम और दक्षिण के बीच में, साउथ वेस्ट को नैऋत्य कहते हैं, और इस दिशा में काल भैरव क्षेत्रपाल विराजमान है। पंडरपुर के महात्म्य में लिखा गया है कि एक बहुत अटपटी बात है, क्या हम जानते हैं नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के उतारने के लिए आए, कुछ समय लीला किया फिर चले गए अपने धाम। प्रभु रामचंद्र अयोध्या धाम से आए, कुछ समय हजारों साल त्रेता में लीला किया, फिर साकेत धाम में चले गए विमान में बैठकर अपनी लीला समाप्त करते हुए। कृष्ण भगवान भी आए, उन्होंने भी कुछ समय लीला किया और वो चले गए, लेकिन पंडरपुर धाम में पांडुरंग जब आए तो वापस लौट के नहीं गए। ये इस धाम की विशेषता है, जो अपने भक्त को मिलने आए तो भक्त की इच्छा से और उनकी बड़ी करुणामय कृपामय स्वभाव के कारण वो जो आए थे वो अभी उधर ही हैं, वे वापस नहीं गए। यहाँ पर एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, आषाढ़ शुक्ल एकादश्याम उपोष्य हरिम अर्चयेत पांडुरंगे स्थितं देवयः समुक्तिम् अवाप्नुयात्। कार्तिके तु सिते पक्षे एकादश्यां विशेषतः पूजयेत गोपवेशं तं पांडुरंगे स्थितं हरि। इसका अर्थ यह है कि आषाढ़ के शुक्ल एकादशी में उपोष्य यानी जो उपवास करता है और हरि की आराधना करता है उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। सब मुक्तिम अवाप्नुयात। और कार्तिक के भी शुद्ध पक्ष में एकादशी आती है उसमें भी जो उपवास करता है और हरि को भजता है उस व्यक्ति को इस जीवन के अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। और एक वाक्य कहा गया है पूजयेत गोपवेशम तम। कार्तिक एकादशी और आषाढ़ एकादशी इन दो दोनों में क्या विशेषता है, साल भर में भगवान ऐश्वर्य भाव में रहते हैं और ऐश्वर्य भाव के कई कार्य होते हैं, जैसे राक्षसों को मारना, संपत्ति धन संपत्ति पैदा करना, अपने भक्तों का लालन पालन करना, उनका मेंटेन करना, दुखों का नाश करना, किसी के जो आता है रो रो के उसको दुख नाश करना, ये सब ऐश्वर्य भाव का लक्षण है। कोई गरीब आदमी रोता हुआ आता है तो उसको धन देना, ये सब भगवान जो है साल भर ऐश्वर्य लीला करते रहते हैं। लेकिन इन दो एकादशियों के दिन वो गोपवेश धारण करते हैं, श्री नंदनंदन यशोदानंदन गोपाल के रूप में भाव है वही वो, लेकिन वो गोपाल भाव में आते हैं, इसीलिए इन दो एकादशियों का विशेष महात्म्य है। वैसे पांडुरंग के धाम में चार वारियाँ होती हैं, वारी यानी जिसमें भक्त लोग पांडुरंग को आते हैं, पांडुरंग धाम में आते हैं, पंडरपुर में आते हैं, उसको वारी कहते हैं, आना जाना उसको वारी कहते हैं। एक वारी चैत्र महीने में होती है, दूसरी वारी अभी चल रही है आषाढ़ी की, तीसरी वारी कार्तिक की है, चौथी वारी माघ महीने की होती है। तो ये दो एकादशी जब आती है तभी भगवान गोप भाव में आते हैं, और आषाढ़ी कार्तिकी में भगवान का स्वरूप वही है लेकिन भाव गोपाल का होता है, इसलिए इस दिन में भगवान का दर्शन करने से उपवास करने से भगवत धाम प्राप्ति होती है, ऐसा महात्म्य कहा गया। और इस दिन भगवान न केवल दीन जनों को कृपा या रक्षा या गरीब जनों को धन या रोगियों को रोग मुक्ति या दुखियों को दुख निवारण, केवल इतना नहीं करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन इस दिन भगवान भक्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, इसलिए भक्तगण इतना दूर दूर से चल चल कर आते हैं। जैसे मैंने कल सवेरे आपको कहा था, आज सवेरे कहा था कि तिरुपति कांचन ब्रह्म है, तिरुपति भगवान के ऐश्वर्य का धन संपत्ति का एक दर्शन है विशेष रूप से। उतना धन जो है वो विश्व भर में किसी मंदिर में नहीं है, उतना धन तिरुपति मंदिर में इकट्ठा होता है। दूसरा नंबर का धन इकट्ठा होता है गुरुवायूर में, उनकी भी बड़ी महिमा है गुरुवायूर भगवान की। तो कांचन ब्रह्म तिरुपति है और अन्न ब्रह्म जगन्नाथ जी हैं, जहाँ पर भगवान के भोजन करने की महिमा है। और पंडरपुर को क्या कहा गया है, नाद ब्रह्म। नाद यानी स्वर ध्वनि शब्द, ये जो नाद है आगे आइए सब लोग, ये जो ध्वनि है इसमें ही सारा विश्व का निर्माण हुआ है। सबसे पहले ओमकार निर्माण हुआ, उसके बाद में बाकी सारे जो पंच महाभूत है, पंच महाभूत में एक ध्वनि है सबसे सूक्ष्म है वो, और बाद में जो उससे जो स्थूल है, बाद में उसके स्थूल है, फिर उसके आगे स्थूल है, ये चार जो पंच महाभूत है उसके बाद में उत्पन्न हुए हैं। और गीत वाद्य और नृत्य, आप लोग जरा सेटल हो जाइए ठीक रहेगा जरा, गीत वाद्य और नृत्य इन तीनों को शब्द की आवश्यकता होती है, और इसके द्वारा ही जब शब्द उत्पन्न होता है तभी गीत वाद्य कार्य करते हैं। वाद्य भी शब्द निर्माण करता है, गीत भी शब्दों से बनता है, नृत्य भी शब्दों के आधार पर निर्माण होता है और किया जाता है। तो ये शब्द के माध्यम से कीर्तन होता है भगवान के नाम का, और कीर्तन से भक्ति भाव प्रकट होता है, और भक्ति भाव प्रकट होने के बाद भगवान की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा ये नाद का सर्कल है। तो हम सब लोगों को इस नाद से बहुत ही लगाव रखना चाहिए, क्योंकि नाद के अंदर ही भगवान बसे हुए हैं। तो भगवान के नाम का नाद होता है तो उसमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ये भूमि जो है ये नाद ब्रह्म भूमि है, क्योंकि यहाँ पर जितना कीर्तन होता है वो विश्व में कहीं होता नहीं होगा। एक मायापुर धाम है भगवान का, जहाँ पर भगवान प्रकट हुए और वहाँ पर भगवत नाम संकीर्तन प्रकट किया। ये तुकाराम महाराज के आने के पहले की बात है। तो ये हरिनाम संकीर्तन जो है इस नाद ब्रह्म का मूल है। नाद ब्रह्म कोई फिल्मी गाना गाने के लिए नहीं है, कोई क्लासिकल सॉन्ग गाने के लिए नहीं है। नाद ब्रह्म केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए, और उसी के लिए ये भूमि प्रसिद्ध है, और उसी के लिए हमको यहाँ पर आना चाहिए और वही लाभ यहाँ से लेना चाहिए। ऐसे कहा गया है कि विट्ठल मंदिर जो है उसका केवल जीवन में एक बार अगर आप साफ सफाई करते हो, मार्जन करते हो, तो ब्रह्महत्या का पाप नष्ट होता है। और किसको पता है कि ब्रह्महत्या का पाप और क्या करने से होता है? यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्याधिकानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो एक बार केवल विट्ठल मंदिर का मार्जन करने से ब्रह्महत्या का पाप नष्ट होता है। हमारे अगर वाचा में कुछ दोष है, समझो हम किसी को बुरा शब्द बोलते हैं, हमेशा किसी को ताने मारते हैं, कुछ सीधी बात नहीं करते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, बात में हमेशा कुछ ना कुछ मन में किंतु परंतु होता है, तो इसका दोष जो है वो भगवान के नाम उच्चारण करने से और उनकी स्तुति करने से, गुणगान करने से नष्ट हो जाता है। और हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में दोष हैं, हम लोग कुछ कार्य करने में गलती करते हैं, काम चोरी करते हैं या कुछ गलत कार्य करते हैं, वो आचरण का जो दोष है वो पांडुरंग भगवान के दर्शन करने से नष्ट हो जाता है। उसके आगे ऐसा लिखा गया इस क्षेत्र के महात्म्य में कि देवी देवताओं के 60,000 वर्ष तक दर्शन करने से जो लाभ नहीं मिलता है वो केवल एक बार पांडुरंग भगवान को दर्शन करके प्राप्त होता है। सारे देवता, ऋषि और जितने महात्मा जन हैं, संत जन हैं, वो इस क्षेत्र में वृक्ष, वेली और पत्थर के रूप में विराजमान रहते हैं, भजन करते रहते हैं। हमने सुना है कि पहाड़ भी जीवित होते हैं और पहाड़ भी अपना स्थान बदलते हैं, और पहाड़ों के रूप में ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब हम अपने घर के लिए पत्थर बांधने के लिए अगर पत्थर यूज़ करते हैं तो उस पत्थर के कई विधियाँ होती हैं। पत्थर को तोड़ने के बाद पत्थर को हम अस्थिर और अशांत कर देते हैं, इसलिए उसको कुएं के जल में डुबाया जाता है और बहुत सारे यज्ञ और पूजा की जाती है। उसके बाद में पत्थर का इस्तेमाल घर को बांधने के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि पत्थर में साधु निवास करते हैं, ब्रज में, वृक्ष में साधु निवास करते हैं, राधा रानी, गोपियाँ और संतजन, ऋषिजन, भक्तजन निवास करते हैं। उस तरह से पंडरपुर क्षेत्र में पेड़, वेली और पत्थर के रूप में संतजन निवास करते हैं। यहाँ पर किन्नर लोग, एक लोग है देवताओं के लोक में किन्नर लोग, वो गायन में बहुत मशहूर रहते हैं। वो किन्नर लोग यहाँ पर भगवान की आनंद के लिए हमेशा गाते रहते हैं। लेकिन ये सब जो दिव्य बातें हैं ये केवल संत लोग ही दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि दोपहर को पंडरपुर क्षेत्र में सारे तीर्थ आते हैं और विट्ठल भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और बीच रात के समय पर 33 करोड़ देवता आते हैं और विट्ठल भगवान को पूजते हैं। जैसे उड़पी में सुबह का एक समय है 7 से 7:30 तक, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में सारे देवता लोग आकर उड़पी कृष्ण की पूजा करते हैं, वैसे उसे बीच रात में आकर यहाँ पर देवता लोग विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं। जब कोई व्यक्ति एक बार यहाँ पर आता है, तत्क्षेत्रम पांडुरंगाख्याम दर्शनान मोक्षदायकम, एक बार केवल यहाँ आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ? आप सब लोगों को मोक्ष प्राप्ति होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ काम करते वक्त किसी का अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मोक्ष के हकदार होते हैं वो सब भाग्यशाली जी होते हैं, भगवान को प्रिय होते हैं। यहाँ पर जो भी आता है वो पांडुरंग विट्ठल को बड़ा प्यारा हो जाता है। इसलिए यहाँ सेवा करते समय कितना भी मतभेद हुआ, कितना भी कुछ आपको अच्छा नहीं लगा होगा, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो प्राप्त हो गया है वो शायद नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक दुख किससे होता है? वैष्णवों का अपराध करने से होता है। जब हम वैष्णवों का अपराध करते हैं सबसे अधिक दुख भगवान को हम पहुंचाते हैं। बाकी सारे अपराध भगवान को इतना दुख नहीं पहुंचाते जितना उनके भक्तों का अपराध पहुंचाता है। ऐसे कहा गया है कि आपने अगर भगवान की बड़ी 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 सेवा की होगी, लेकिन अगर उनके प्यारे भक्त का कोई आप अपराध करते हो तो सारे भगवत सेवा का फल नष्ट हो जाता है, यानी कि भगवान उस भगवत सेवा को देखते नहीं है, उसको महत्व देते नहीं है, ज्यादा महत्व उस चीज को देते कि आपने मेरे भक्त का अपराध क्यों किया, उससे उनको दुख ज्यादा होता है। इसलिए धाम में रहते हुए सेवा करते हुए हो सकता है हमारे मन जैसी हर चीज नहीं हो सकती है, या हमारे मन जैसे हर व्यक्ति आपसे व्यवहार नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि हम लोग अभी बाहर से अभी तक बद्ध अवस्था में हैं, हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं, तो हो सकता है कि हमारा व्यवहार दूसरों को पसंद नहीं आता होगा। फिर भी यहाँ रहते हुए मन को शांत रखते हुए, हमेशा पांडवों का ध्यान रखते हुए, मुख में हरि का नाम लेते हुए, सेवा में रत रहते हुए, भक्तों के अंदर जो दोष दिखाई पड़ते हैं उनको दुर्लक्ष करना चाहिए। ये एक प्रगल्भ भक्त का लक्षण है, वन इज अ मैच्योर डिवोटी, उसका लक्षण है कि वो जानता है कि धाम में रहकर कभी भी भगवान के भक्तों का मन से भी अपराध नहीं करना चाहिए, मन से भी भक्त को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। दर्शनम ना हर्षनम, ये भी वैष्णव अपराध का एक प्रमुख अंग है। वैष्णव को देख के हमेशा आपको आनंद होना चाहिए, ये हमारे मन का ट्रेनिंग आपको देना चाहिए मन को। ये पद्म पुराण में कहा गया है बाय द वे, हाँ, इसलिए यहां पर रहते हुए किसी का अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि हम लोग दुनिया भर में रहकर भी हमारे हाथ से जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, धाम में आते सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे दुर्भाग्य लोग हैं कि हम धाम में आके भी अपराध करते हैं। जैसे हमने बताया नहीं करना चाहिए, फिर भी होता है, तो उसको कहा गया है वज्रलेप। हम जानते हैं वज्रलेप क्या होता है, एक कोई लेप होता है वो पानी से तेल से निकाल सकते हैं उसको आप, लेकिन वज्रलेप को निकालना बहुत मुश्किल है, वो इतना हमारे आत्मा पर जाकर चिपकता है कि उसको निकालना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन धाम में किया हुआ अपराध भी पंडरपुर क्षेत्र में आके नष्ट हो जाता है, ऐसे ही इस क्षेत्र का महात्म्य है, ऐसा वज्रलेप आकर पंडरपुर में नष्ट हो जाता है। तो इस धाम में क्या क्या अपराध कर सकते हैं, और या तो सात महत पाप कौन से हैं, एक है मांसाहार करना, हाँ, जीव की हत्या करके उसका मांस खाना, एक है व्यभिचार करना, परस्त्री के साथ संबंध करना, तीसरा है नशा करना, चौथा है जुआ खेलना, और एक पाप है गर्भ हत्या, एबॉर्शन, हाँ, और कई सारे हैं उसमें, स्त्री की हत्या करना, किसी के घर को जला देना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब महापातकों में आता है। क्योंकि हम जानते नहीं, हम स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलने से किसका परिणाम क्या क्या हो सकता है आगे जाकर, उसका हम अंदाज लगा सकते नहीं हैं। इसलिए झूठ बोलना, असत्य असत्य बोलना, किसी के घर को जलाना, किसी की पत्नी पर बलात्कार करना, और ये चार पातक जो हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में पालन करते हैं। और एक पातक बताया गया है कि गुरु के पत्नी पर बुरी नज़र रखना, ये तो आजकल हम देखते नहीं क्योंकि अक्सर गुरु सन्यासी होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में सारे ऋषि जो गुरु थे वो गृहस्थ थे, तो ऐसा पातक भी हुआ करता था। ये सब महापातक कहा गया है। तो ये सब महापातक जो है चंद्रभागा में स्नान करके नष्ट हो जाते हैं, ये महापातक विट्ठल जी का दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं, ये महापातक केवल विट्ठल का दर्शन भी करेंगे, हम स्मरण करेंगे घर में बैठकर, तो भी नष्ट हो जाते हैं, और ये महापातक पंडरपुर में निवास करने से भी नष्ट हो जाते हैं, और लास्ट में जो कॉमन है नाम संकीर्तन करने से ये सारे महापातक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं जब हवा बहती है धाम में, तो वो क्षेत्र के ठाकुर जी हम सबको आलिंगन दे रहे हैं, और आषाढ़ी के समय पर वो प्रचुर मात्रा में आलिंगन देते हैं, है ना, कितने दिन भर हवा बहती रहती है। तो धाम में कैसे रहना चाहिए, धाम में आत्मा के स्तर पर सतर्क होकर रहना चाहिए हमको, ऑलवेज स्पिरिचुअली अलर्ट, हाँ, ये बहुत समझना जरूरी है। धाम का जल पीते हुए उसके स्वाद में भगवान को याद करना चाहिए, धाम की हवा लेते हुए, धाम जब जोरदार हवा बहती है, इसको जरा पेन लगाना, धाम में जब हवा बहती है तो भगवान के आलिंगन का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि तो भगवान आलिंगन आपको दे रहे हैं। इस प्रकार से ये सब बताया जा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ दिन रहने वाले हैं, हो सकता है एक पहले दिन में बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में रहेंगे स्पिरिचुअल, सेकेंड डे में फिर थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे, तो फिर यहाँ वहाँ का अपराध देखने लगेंगे, यहाँ वहाँ का बुराई देखने लगेंगे, और थर्ड डे में हो सकता है झगड़ा हो सकता है, और फोर्थ डे में हम लोग प्रसाद में गलती निकालेंगे, ऐसा क्यों बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, कल भी आलू की सब्जी बनाई थी, आज ही आलू की सब्जी क्यों बनाई, है ना, वही वही बनाते रहते हैं, कोई स्वाद ही नहीं है। हम सब लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर भोजन का स्वाद लेने के लिए नहीं आए हैं, प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हैं। वो प्रसाद जो भगवान को अर्पण किया होता है वो जैसे है उसको पूरे गौरव के साथ सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए। वैसे हमारी योग्यता नहीं है धाम में आकर प्रसाद पाने की, लेकिन हमारे लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जल पान की व्यवस्था की गई है, सोने की भी व्यवस्था की गई है। तो धाम में केवल एक भावना हमें प्रधान रूप में रखनी चाहिए, वो है कृतज्ञ भावना, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद की भावना, थैंक यू की भावना। जो भी मिल रहा है थैंक यू वेरी मच, जो नहीं मिल रहा है वो भी थैंक यू वेरी मच, जो भगवान दे रहे हैं। क्योंकि हम किसी के घर में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मैं जब आऊँगा ना तो आपका मास्टर बेडरूम में सोऊंगा, याद रखना, आप लोग अपने आप को शिफ्ट कर लेना साइड रूम में, और जब मैं आऊँगा तो मुझे फिर गुलाब जाम बनाना और मुझे वो बाथरूम जो है ना उस पर अच्छा गीजर चाहिए। नहीं, किसी के घर में जाते मेहमान बन के तो यजमान जो है हमारा, जो मालिक है घर का, वो तय करता है कि आप कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, आपको क्या खिलाएंगे, चद्दर कौन सी देंगे, आपको कौन से बाथरूम यूज़ करने देंगे, कौन सा बेडरूम देंगे। हाँ, ये सब बातें यजमान तय करते हैं। तो जब हम पंडरपुर में आते हैं तो हम पिट्ठल भगवान के घर में आ रहे हैं, संतों के घर में आ रहे हैं। तो संत हमको जिसका मायका समझते हैं उसके घर में हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे रखना है, क्या खिलाना है, कहाँ सुलाना है, किस तरह से आपको रखना है, क्या क्या गतिविधि आपको देना है, क्या सेवा देनी है, किस प्रकार की बीमारी देनी है, ये सब भगवान तय करते हैं। किस प्रकार का शुद्धिकरण करना है आपका, क्या प्योरिफिकेशन देना है आपको, किसका संग देना है, क्या क्या सुनाना है, कितना कितना महात्म्य आपके सामने प्रकट करना है, क्या साक्षात्कार आपको देना है, ये सब भगवान तय करते हैं। और जो भगवान तय करते हैं वो परफेक्ट होता है। इसलिए भगवान आपको जो भी दे रहे हैं, अच्छा अनुभव दे रहे हैं, बुरा अनुभव दे रहे हैं, अच्छा बुरा अनुभव जो है वो इंद्रियों का प्रतिसाद है। इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ द इंद्रियज। आपकी इंद्रिय आपको बता रहे हैं कि अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन यहाँ पर जो भी होता है वो आत्मा के लिए अच्छा होता है, आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए हमें यहाँ पर जब भी आते हैं तो मन की तैयारी करके आना चाहिए कि हमको जो भी मिलेगा उससे हमको कृतज्ञ रहना है, वी हैव टू बी ग्रेटफुल। और यहाँ पर अगर हम रहकर कृतज्ञ भावना को बनाएंगे अच्छी तरह से परवरिश करेंगे उस भावना की, तो हो सकता है कि आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर कृतज्ञ रहेंगे। क्योंकि कृतज्ञता की भावना जो है वो सबसे अधिक भगवान को आकर्षित करती है। एक नम्रता की भावना, एक कृतज्ञता की भावना, ये भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। हमारे अंदर अनंत दोष होंगे, लेकिन जो ये दो भाव के साथ हम यहाँ रहेंगे तो भगवान जितने भी क्षण आपको यहाँ निवास दे रहे हैं उतने क्षण आपसे प्रसन्न रहेंगे। और हम लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इस धाम के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, नाथ हैं, उनके चरणों का आश्रय लेने के लिए आए हैं, उनके भक्तों के चरणों का आश्रय लेने के लिए आए हैं, उनकी सेवा करने के लिए आए हैं। और हमारा कोई जलेबी और चाउमीन खाने का उद्देश्य नहीं है यहाँ पर आके। हाँ, मैंने बता दिया स्ट्रिक्टली, आपको सबको पता होना चाहिए कि कोई भी विदेशी चटपटा खाना यहाँ पर नहीं बनेगा, बिल्कुल सीधा साधा सिंपल खाना बनेगा तो यहाँ के लोग खाते हैं। क्योंकि हमको ऐसा भोजन करना चाहिए धाम में आकर जो धाम की याद दिलाए, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए धाम में रहकर खाएंगे तो परदेश की याद आए। तो क्या हुआ, उस खाते समय आपका मन और आत्मा परदेश चले गए। तो धाम निवास करने के लिए आए दूर से और जा रहे हैं परदेश को, यहाँ पर रहते हुए अच्छा है क्या आपके लिए, वो नहीं है। यहाँ पर कैसा है, झुनका भाकर, पोड़ी भाजी, सिंपल सा खाना खाते हैं। तो वैसे ही खाना बनाकर, उस देश का खाना बनाकर भगवान को भोग लगा के बड़े कृतज्ञ मन से ग्रहण करना चाहिए। तब जाकर हर एक गतिविधि से आपको शुद्धिकरण मिलेगा और प्रगति मिलेगी, आध्यात्मिक प्रगति। हर एक गति यहाँ पर आप जो करेंगे, कार्य करेंगे, उससे आपको आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होनी चाहिए। उस तरह से धाम का निवास करना चाहिए, इसलिए कृतज्ञता की भावना का वर्णन कर रहे हैं। आगे कहा गया है कि ये धाम जो है वो कर्मियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए, तपस्वियों के लिए और भक्तों के लिए, सबके लिए पर्याप्त है। सब प्रकार के जीवों के लिए धाम पर्याप्त है। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रकार का जीव आता है, पापी से पापी भी जीव आता है तो उसको भगवान शुद्ध कर देते हैं। जैसे अग्नि होता है ना, उसके अंदर आप कुछ भी डालो वो सबको जलाकर शुद्ध कर देता है। सूरज की रोशनी में जो भी आएगा वो पवित्र हो जाता है। उस तरह से धाम, क्योंकि भगवान से अभिन्न है, धाम और धामी, धामी कृष्ण विट्ठल भगवान है, यहाँ के धाम पंडरपुर हैं। इसलिए पंडरपुर और धामी विट्ठल ये अभिन्न है। इसलिए हमको धाम में चलते हुए पहले प्रणाम करना चाहिए कि हम साक्षात भगवत रूप धाम जो है उसमें प्रवेश कर रहे हैं, उसमें चलने वाले हैं। चलना तो अनिवार्य है, लेकिन हमको ये भावना रखनी चाहिए मन में। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब धाम में आप आते हैं, धाम में कचरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धाम भगवान का शरीर है। हमारी तरफ से वैसे भी स्नान करना पड़ेगा, शरीर का मैल साफ करना होगा, मलमूत्र विसर्जन करना पड़ेगा, वो तो अनिवार्य। गंदगी हमको पैदा करनी है, जहाँ पर हम जाएंगे जब तक शरीर है तब तक ये उत्सर्जन होने वाला है। लेकिन उसके आगे जाकर धाम में कोई कचरा हमको पैदा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके बैग में डालिए, और जहाँ पर जो बोनाफाइड योग्य कचरा डालने की जगह है वहाँ पर आके जमा कीजिए। इसलिए हम खास करके हमने बताया कि प्लास्टिक यहाँ पर मत लाना, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने का प्रयास मत करना, और हो सकता है अगर लाए होंगे तो यहाँ पर उसको डिस्पोज मत करना। हमारी तरफ से धाम में कोई भी कचरा प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। चाहे बाकी जनता से धाम में बहुत सारा कचरा उत्पन्न हो गया होगा, उसको देखकर हम बोलेंगे इतना तो हो रहा है, फिर हमारे से क्या होने वाला है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे हाथ से हमारे अकाउंट में कोई भी कचरा यहाँ पर पैदा नहीं होना चाहिए, और जितना हो सके उतना हमारी तरफ से गंदगी की जगह पर सफाई निर्माण करने का प्रयास हमको करना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने कहा है, अगर हम समझो म्यूनसिपालिटी की दया से हमको ये पूरी बिल्डिंग मिलती है, समझो हर बार मिलती है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, भोजन पाते हैं, सेवा भी करते हैं, बहुत सारा अच्छा अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जाने के समय हमको इसको जितना पहले था उससे भी अधिक स्वच्छ करके जाना चाहिए। ये हमारे गुरुदेव की भावना है। चाहे बरसाना हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे और कहीं हम लोग सेवा कर रहे हो, जहाँ पर भक्त जाते हैं उनको वहाँ पर पहले से अधिक शुद्धि निर्माण करके वापस जाना चाहिए, ताकि लोगों को लगेगा कि हाँ भक्त लोग यहाँ पर आए थे। ऐसा नहीं कि हमने सफाई का बहाना किया, आए हमारे लिए साफ किया और जाते वक्त पहले से भी गंदा छोड़ के चले गए। लोग कह रहे कैसे लोग हैं, देखो कितना रूम गंदा करके छोड़ा है, कितना पानी गिरा है, कितना पानी या सब्जी गिरी, दाल गिरी थी, कितना सूखा हुआ, इतना गंदा हो गया है। तो जो लोग लास्ट पार्टी में, उनको मैं विनती करता हूँ कि धाम की चेतना कैसी होनी चाहिए। धाम से निकलते हुए जिस जगह का हमने उसे उपयोग किया, जिस भूमि का उपयोग किया, जिस वास्तु का उपयोग किया, उसको पहले से भी अधिक स्वच्छ करके हमको जाना चाहिए। नीट नीट का बोलते हैं मराठी में, उसको ऐसे करके हमको जाना चाहिए, ताकि जब अधिकारी लोग यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे अरे जो आए थे वो वास्तव में भक्त थे, क्या कल्चर है उनका, क्या संस्कृति है उनकी, क्या आदतें हैं उनकी। जहाँ जाते हैं वहाँ पर स्वच्छता का निर्माण करते हैं, अस्वच्छता का निर्माण नहीं करते हैं। और सुबह मैंने आपको एक बात बताई थी, उसका मैं श्लोक बताऊंगा आपको। हाँ, नास्ति नारद क्षेत्रस्य, नास्ति नारद, नारद मुनि को भगवान शिव जी बता रहे हैं, हे नारद नास्ति क्षेत्रस्य भूसंबंध कदाचन। पंडरपुर क्षेत्र का भूमि से पृथ्वी संबंध नहीं है। वितस्ति मात्र, यानी कि वीत, वीत ये शब्द संस्कृत है, वितस्ति मात्र तस् त्यक्त्वा तिष्ठति एवर एव तत्। पृथ्वी को छोड़कर वीत का अंतर के ऊपर ये तिष्ठति यानी कि विराजमान है। और कैसे वर्णन किया है, ज्योतिर्मयानी यानानी, यान का मतलब क्या होता है, विमान जो आकाश में उड़ता है, ज्योतिर्मयानी जो प्रफुल्लित है, प्रकाशमान है, हाँ तेज पुंज है, उसको ज्योतिर्मय कहा गया है। ज्योतिर्मय यानानी, जैसे प्रफुल्लित तेजमय तेजायमान यान होता है भगवान का, वैसे ये धाम यथा नभसी भांति वही, वैसे आकाश में विराजमान है। एवं ज्योतिर्मयम नभस्य एवच भासते, ऐसे ये विमान के समान आकाश में विराजमान है, ऐसे पद्म पुराण में कहा है। तो अभी हम इस धाम का इतिहास कहने का प्रयास करेंगे। तो द्वापर में यहाँ पर भगवान कृष्ण आए तो ये पंडरपुर, पुंडरिकपुर, पांडुरंगपल्ली बन गया, लेकिन उसके पहले से ये क्षेत्र बहुत पवित्र माना गया है। एक नाम है दिंडीरव वन, क्योंकि एक राक्षस था बहुत भयंकर, दिंडीरव, वो इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था, लेकिन बहुत क्रूर था। उसने अपने शक्ति और बल से सभी देवताओं को त्रस्त करके, परास्त करके भगा दिया था। उसे त्रस्त होकर देवता लोग इंद्र के नेतृत्व में एक बार विष्णु के पास गए। भगवान ने भगवान को कहा कि हमको बहुत पीड़ा हो रही है इस दिंडीरव राक्षस की वजह से, कृपा करके आइए और उसके इसके त्रास से हमको मुक्ति दिला दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करना, मैं आऊँगा और इसका नाश करूँगा, आप अपने अपने स्थान पर चले जाना। यथावकाश एक राजा हुए, उनका नाम था श्रीचंद्र। ये राजा ने देवताओं के 1000 साल तपस्या किया, सेलेस्टियल 1000 ईयर्स। देवताओं का कालावधि कैसा होता है? 6 महीने हमारे देवताओं का 1 दिन होता है, 1 साल में देवताओं के 2 दिन होते हैं, ऐसे उनके साल होते हैं। ऐसे हमारे जब 15 साल पूरे होते हैं तो उनका 1 महीना पूरा होता है, ऐसे 12 महीने का उनका साल होता है, और ऐसे 1000 साल राजा श्रीचंद्र ने तपस्या किया। और कहाँ जाकर किया? कैलाश में जाकर तपस्या किया। तो शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि आप वर मांगिए, आप बहुत सदाचारी हैं, सद्गुणी हैं, सद्विवेकी हैं, धर्म आचरण करने वाले हैं, और आपने इतना सुंदर हृदयपूर्वक तपस्या किया है, आप क्या फल चाहते हैं बताइए, आप वरदान मांगिए। तो राजा कहते हैं कि मुझे आप जैसा या विष्णु जैसा पुत्र चाहिए जो आपके समान बुद्धिमान और तेज संपन्न हो। तो यथावकाश शिवजी उनको वरदान देते हैं कि भगवान विष्णु आपके गर्भ में जन्म लेंगे, जिनका नाम मल्लिकार्जुन होगा, उनके द्वारा डिंडिरव राक्षस का वध होगा। तो यथावकाश राजा की पत्नी गर्भवती होती है और तेज पुंज भगवान का शक्तावेश अवतार मल्लिकार्जुन उनके गर्भ से जन्म लेता है। वो बड़ा पराक्रमी सद्गुण संपन्न होता है और 20 साल की उम्र में एक दिन ये भगवान का अवतार पुत्र राजा का मल्लिकार्जुन जंगल में शिकार जब खेल रहा है तब जंगल में उसका डिंडिर राक्षस की मुलाकात होती है और मुलाकात होते ही डिंडिर उस पर आक्रमण करता है और बहुत ही भयंकर घनघोर युद्ध होता है। इतना घनघोर युद्ध होता है कि कभी आकाश में, कभी पाताल में, कभी जल में, कभी भूमि पर ऐसा युद्ध करते हैं। सब देवता लोग भयभीत होकर छुप छुप कर युद्ध को देखते हैं, पता नहीं क्या होगा, इतना भयंकर दिव्य युद्ध हो रहा है, जैसे हिरण्याक्ष का और वराह भगवान का हुआ था, अवकाश में हुआ था युद्ध, वो पृथ्वी पर कैसे होगा, पृथ्वी को लात मार के उसने तो समुद्र में फेंक दिया था, इतने विशालकाय राक्षस थे वो उस समय। तो वैसे ही मल्लिकार्जुन और उनका युद्ध शस्त्र अस्त्र बल मुष्टि हर प्रकार के पेड़ सब प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करके इनका भयंकर युद्ध होता है। इसके आखिर में एक लोह दंड नाम की गदा होती है, उसको लेकर मल्लिकार्जुन भगवान डिंडिरव के सर पर प्रहार करते हैं और इसका प्रहार होते ही राक्षस गिर जाता है, लेकिन अचानक अपने मुंह से हरी हरी बोलता है। क्या बोलता है?
हरी हरी।
क्या बोलता है?
हरी हरी।
क्या बोलता है?
हरी हरी।
हाँ, तो जैसे ही ये हरी हरी बोलता है उसी समय शक्त्यावेश अवतार मल्लिकार्जुन तो है वहां पर, लेकिन साक्षात पूर्ण भगवान विष्णु भी वहां पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं कि जो भी व्यक्ति जैसा भी हो अगर मृत्यु के समय मुझे याद करता है तो मैं उससे बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं, मेरे धाम की प्राप्ति करता है, मांगो वरदान मांगो। तो राक्षस डिंडिरव अभी जो भक्त बना हुआ है, जिसका हृदय स्वच्छ हो गया है, भगवान के दर्शन से पुनीत हो गया है, वो कहता है कि जिस जगह पर यह लोह दंड गिरा हुआ है, मुझे प्रहार करने के बाद जहां रखा गया है भूमि पर, उस क्षेत्र को लोह दंड तीर्थ नाम से जाना जाए। यहां पर जो भी आएगा, जो भी व्यक्ति इस लोह दंड क्षेत्र का स्पर्श करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाने चाहिए। इस जगह का भगवान मल्लिकार्जुन नायक बनने चाहिए और जो भी उनका दर्शन करेंगे उनके सारे पाप नष्ट होने चाहिए और वो पवित्र होने चाहिए, और इस पूरे जो जंगल का नाम है वो डिंडिरव वन होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग विराजमान हैं, जो त्रिपुरात्मक जगह है वो इसके बीच में है, लेकिन ये सारा क्षेत्र जो है पंडरपुर का, जो मैंने बताया ना आपको 4 मील लंबा और 2 मील चौड़ा, ये क्षेत्र जो है ये डिंडिरव वन से नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ पर आने से हर एक व्यक्ति पहुँचने मात्र से ही पाप से मुक्त होकर भक्ति को प्राप्त करता है। ये कहानी पद्म पुराण में शिवजी ने पार्वती को बताई, फिर ये कहानी नारद मुनि ने शेष जी को बताई, फिर ये कहानी सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में बताई। और क्योंकि ये जगह अति पवित्र है, पवित्र करने वाली है, इसलिए रुक्मिणी देवी ने भी यहाँ पर आकर तपस्या की है। रुक्मिणी देवी यहाँ पर क्यों आई? क्योंकि भगवान अपने 10 साल और 4 महीने की, एक जगह पर लिखा है 11 साल और 52 दिन का ब्रजवास, ब्रज लीलाओं को संपन्न करके फिर वो मथुरा चले गए। वहाँ से उन्होंने कंस को मारा, फिर कंस के 2 पत्नियाँ विधवा हो गई, इसलिए जरासंध को गुस्सा आया जो उसकी पुत्रियाँ थी। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, फिर भगवान वहाँ से मथुरा वासियों के कष्ट को देखते हुए द्वारका चले गए। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य और खुशी होगी, हम लोग जब शिफ्टिंग करते हैं ना सामान कभी, समझो आपने अभी सोचा कि पंडरपुर में आके घर ले लें, तो बम्बई से आप सामान पैकिंग करेंगे, पूरा पैकर मूवर्स को देंगे, वो पैक करेंगे, वो ट्रक में डालेंगे, कितना कष्ट होता है। और यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पर उसको अनपैक करेंगे, कुछ टूटा है, कुछ फूटा है, सेटल करेंगे, फूटने का सामान फेंक देंगे, नया सामान लगा देंगे, और धीरे धीरे आपको याद आएगा कि आपके कपड़े कहाँ हैं, आपकी पैंट कहाँ है, आपका साड़ी कहाँ है, और धीरे धीरे आप सेटल हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान ने द्वारका बनाई तो उसके एक ही रात में अनंत महलों के साथ, राज दरबार के साथ बना दिया। और जब रात को बनाया, उस शाम को मथुरावासी मथुरा में सोए और अगले दिन द्वारका में अपने नए घर में उठे। मुझे बड़ा सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, इट्स सो वंडरफुल ना, यू जस्ट स्लीप इन वन प्लेस एंड गेट अप इन द नेक्स्ट प्लेस, वंडरफुली अरेंज, शिफ्टेड कंप्लीटली, नो तकलीफ, एज फ्रेश एज एवर। तो उसमें भगवान निवास करने लगे। फिर वहाँ पर कालायावन ने हमला किया, जरासंध ने हमला किया, बड़ी लंबी कहानी हुई, बताऊंगा आपको मैं। तो इतने बसा पुड़े, तो क्या कर रहा था मैं, तो द्वारका में भगवान ने फिर विवाह किया, पहले 8 रानियों से विवाह किया, फिर 16,100 रानियों से विवाह किया। तो तब वह वृंदावन से दूर थे, तो सारी गोपियाँ, राधा रानी सब वृंदावन में, त्रिशोदा माई, नंद महाराज, ग्वाल बाल, सब मोर पंछी सब वृंदावन में रह गए। तो लोकनाथ जी महाराज अपनी किताब में लिखते हैं शास्त्रों के आधार पर कि एक दिन राधा रानी कृष्ण भगवान को मिलने द्वारका आई, तब रुक्मिणी किसी काम से बाहर चली गई थी। राधा रानी को बहुत दिनों के बाद देखकर भगवान को बड़े भाव उन्मिलित हो गए, राधा रानी बड़े प्रसन्न हो गई और एकांत में उन्होंने बैठकर संग किया। कुछ देर बाद में रुक्मिणी आई और उन्होंने भगवान का राधा रानी के साथ दर्शन किया, तो उनको बड़ा दिव्य मान हुआ। उसको क्रोध नहीं कहते हैं, उसको मान कहते हैं। भगवान की लीला में सम्मिलित जो शुद्ध जीव हैं वो क्रोध नहीं करते हैं, तो भगवान के आनंद को बढ़ाने के लिए मान करते हैं। ये मान जो है वो 8 भाव से बना हुआ है, इसमें प्रेम, रति, स्नेह, सब प्रकार के भाव समाये हुए हैं। तो वो मान करती है और डिंडिर वन में चली जाती है दक्षिण की ओर। तो भगवान जब समझते हैं कि रुक्मिणी नाराज होकर चली गई है, तो उसको ढूंढते ढूंढते भगवान यहाँ पर आते हैं। ऐसे कहा है कि वो तभी द्वारका से आए, एक लीला में भगवान द्वारका से आए तभी वो शादीशुदा पुरुष थे, थोड़े से उम्र वाले भी थे हाँ, लेकिन एक युग कल्प में भगवान ने लीला ऐसा किया है कि उन्होंने, भगवान ने धेनुकासुर का वध किया जब वो 5 साल की उम्र के थे। धेनुकासुर का वध करके गायों को बछड़ों को लेकर भगवान यहाँ पर आए हैं दिंडर वन में, ऐसा भी कहा गया है। हर युग में भगवान लीला करते हैं, वो अलग अलग भाव से करते हैं, अलग अलग विविधता से करते हैं। तो एकादशी के दिन जो हमको भगवान दिखते हैं वो 5 साल के गोपाल दिखते हैं, और बाकी के समय वो द्वारकाधीश के रूप में ऐश्वर्य वाले भगवान दिखते हैं। एक में वो द्वारकाधीश रुक्मिणी के पति के रूप में आते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि उसके कारण वो यहाँ पर एक और लीला करने के लिए आए। उसका बैकग्राउंड ऐसा है, आपको कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है ना अच्छी तरह ध्यान दीजिए, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। तो देवताओं के समय पर देवताओं का, असुरों का बहुत बार युद्ध हुआ है, देवासुर संग्राम कहते हैं उसको, अनंत बार युद्ध हुआ है। वैसे ही एक बार जब युद्ध हुआ तो मुचुकुंद नाम के राजा ने देवताओं का सहायता किया और देवताओं ने उसे विजय प्राप्त किया, तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए कि पृथ्वी के राजा ने कितना सहायता किया हमको। जैसे कटवांग राजा थे, उन्होंने भी एक बार सहायता किया था, उनके पास एक क्षण था, उन्होंने पूछा जीवन का कितना समय बाकी है, तो देवताओं ने गणित किया और पूछा कि हाँ एक एक क्षण बाकी है, तो एक क्षण में ध्यान किया भगवान का उन्होंने और सीधे भगवत धाम चले गए। वो भी एक राजा थे जिन्होंने देवताओं को कई हजारों साल युद्ध में सहायता किया था। वैसे ही सहायता किसने किया, क्या बताया मैंने, मुचुकुंद राजा ने किया। युद्ध समाप्त हुआ, देवताओं का विजय हुआ, तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा मुचुकुंद वर मांग ले, क्या चाहिए आपको। लेकिन वर मांगना जो होता है ना, वो हमारे शरीर मन और भावना की अवस्था पर आधारित होता है। हमारा शरीर मन किस हालत में है, ऐसे हमारे एक 11th में एक इंग्लिश में एक चैप्टर था हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। तो डॉक्टर कैसे जब भूखा होता है तो मरीज को बोलता है कि आप जो चाहे खा लो, तो लंच के बाद में आता है बोलता है ये मत खाओ वो मत खाओ। उसकी क्या स्थिति है मन की, उसके अनुसार वो प्रिस्क्राइब करता है उसको। अगर वो, अभी नाम नहीं लूंगा, हमारे पास भी कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि आप ना बैंगन खा सकते, वो काला मत खाइए गोरा खा सकते हैं। बाद में पता चला कि डॉक्टर को बैंगन बहुत पसंद है, इसलिए वो कहते हैं कि आप घी में तलो उसको, आप उसको फलाना फलाना ट्रीटमेंट करो और फिर आप सब सीजन में उसको खा सकते हैं। तो अंदर की बात क्या है, भाव के पर आधारित होती है। उसी तरह से बेचारा मुचुकुंद जो है वो युद्ध करके इतना थका हुआ था, उसने कहा कि वरदान देना है, नींद चाहिए मुझे, इतना थक गया था वो। और आप यकीन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि कितना थक गया होगा। उसने कहा वाली नींद चाहिए, इतना नहीं मांगा, बोला ऐसी नींद चाहिए कि अगर बीच में कोई आके मुझे उठाएगा ना, अगर मैंने देखा उसको उठ के, तो मेरी आंख उस पर पड़ते ही, नजर पड़ते ही वो जल के भस्म होना चाहिए। मतलब कितना हद तक थक गया होगा वो। कभी कभी हम भी थकते हैं ऐसे, बोला खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, बिस्तर कहाँ बताओ, और मुझे अलार्म वलार्म कुछ नहीं चाहिए, सब बेल वेल बंद कर दो, कोई मेहमान नहीं आना चाहिए, सबको बोल दो अभी 12 घंटे आना नहीं है मेरे को मिलने के लिए, जब मैं अपने आप उठूंगा फिर सोचूंगा क्या खाना है क्या पीना है किसको मिलना है। कलयुग में काम कितना करना पड़ता है ना, पहले तो 4 महीने काम करेंगे खेती में तो 8 महीने आनंद करते लोग, 8 महीने क्या करते थे, केवल भजन साधना और पूजन करते थे, केवल 4 महीने का काम था। अभी 12 महीने कम से कम 12 से 15 घंटा काम करने पर भी एक परिवार का पेट नहीं भरता है, ये स्थिति आ गई है। और थकना इतना कॉमन हो गया है, एक तो आलस्य है उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इच्छा के खिलाफ, क्योंकि आलस्य अपने को काम करने को मतलब परावृत्त कर देता है काम करने से। तो ये देवताओं की सेवा करके इतना थक गया होगा, सोचो आप। तो वरदान मांग लिया, तो वरदान दे दिया उनको उन्होंने, हाँ भाई सो जाओ तुम, और तुमको जो भी उठाने को आएगा वो जलकर बस भग जाएगा। अभी देखो निद्रा एक तमोगुण का लक्षण है ना, निद्रा को तो कम से कम लेना चाहिए, जितना जरूरी है उतना लेना चाहिए, अधिक ले ले तो शरीर पर विपरीत परिणाम करता है वो, शरीर पर मन पर भावना पर चेतना पर सब पर बुरा परिणाम करता है। इसलिए भक्त लोग जो है वो पर्याप्त नींद लेते हैं, ज़्यादा नहीं सोते हैं, और सोते भी हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पर उठते हैं, ताकि सेहत भी अच्छी रहती है और चेतना भी अच्छी रहती है। अब ये पता है सबको देवताओं को, और वो ऋणी भी है उसके, लेकिन जाके उठाएगा कौन उसको, शाप तो मिला हुआ है ना, मतलब वरदान तो मिला हुआ है उसके लिए, शाप हो गया ना वो, तभी इसको कौन तार सकता है। ये तो सत्ययुग की कथा है, सत्ययुग में सो गया बेचारा गुफा में जाकर, शांत जगह पर, कोई आवाज नहीं होना चाहिए वहां पर। तो त्रेता भी बीत गया, प्रभु रामचंद्र आए लीला करके चले गए, अभी द्वापर का अंत आया तो कृष्ण भगवान आए, पता है कितने साल हो गए, लाखों साल बीत गए, लाखों लाखों साल बीत गए। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, वो कभी भी अपने भक्त के द्वारा की गई सेवा को भूलते नहीं है, और ऐसी सेवा की गए भक्तों का कल्याण भी कभी भूलते नहीं वो, ये नेवर फॉरगेट्स। हम लोग शायद भूल जाएं हमने उनके लिए क्या किया है, हम लोग शायद भूल जाएंगे कि किसी अच्छे भाव में हमने कहा होगा भगवान जो करना है करो लेकिन आपके धाम में मुझे ले चलो, और बाद में उसकी व्यवस्था करते हम बोलते हैं भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मुझे ही क्यों चुना आपने कैंसर के लिए। वाई मी ओनली, ऐसे बोलते हैं हम लोग, तब भूल जाते हैं कि हमने पहले कभी अच्छी भावना में ऐसी पुकार हृदय से की थी, वो हम भूल गए, लेकिन भगवान उसको याद रखते हैं। और जो भक्त भगवान को कभी एक बार भी दिल से पुकारता है उसको भगवान याद रखते हैं। हम आगे जाकर उस भगवान के दुश्मन बन जाएंगे, शायद भगवत विद्रोही बन जाएंगे, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे भक्त की एक बार की वो इच्छा जो है ना वो भूल नहीं सकते हैं। तो भगवान को याद था कि मेरा भक्त सोया हुआ है और उसको उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है, कितना भी कल्याणकारी जीव हो जाएगा तो उसको जलाकर भस्म कर देगा, तो मुझे ही कुछ करना होगा। तभी हम लोग वापस आते हैं द्वारका में, भगवान अभी अभी रात को लोगों को शिफ्ट कर चुके हैं, लोग रात को मथुरा में सोए थे वो अभी इधर उठ गए हैं। तुरंत कालयावन ने आक्रमण किया। कालयावन को एक वरदान था, तपस्या के बल से प्राप्त हुआ था कि तुम यादवों के लिए भय का कारण बनोगे। तो भगवान को पता था कि ये तो यादवों को भय पैदा करेगा, तो भगवान ने एक आइडिया किया। जैसे ही द्वारका में कालयावन ने एक दिशा में आक्रमण किया, सेकेंड दिशा से जरासंध आ रहे थे, देखो आप कैसी स्थिति थी। तो भगवान अकेले बाहर आए द्वारका के द्वार से और कालयावन ने कहा सावधान कृष्ण, मैं आक्रमण कर रहा हूं। तो ये भगवान चलते रहे और चलते रहे और चलते रहे, उसके पास आए और चलते रहे, उसके आह्वान को स्वीकार नहीं किया तो उसको और त्वेष आ गया, बोले रे डरपोक कहां भाग रहे हो, सावधान युद्ध करो मुझसे। तो चलते गए, वो चलते गए चलते गए, तो वो भी रथ से उतर गया और चलने लगा उसके पीछे और बुरा भला बोलने लगा उनको चेतावनी देने के लिए और उसको उत्सित करने के लिए, क्या कहते हैं उसको, इंस्टिगेट करने के लिए। तो भगवान भागने लगे तो भी भागने लगा उनके पीछे, भगवान जोर से भागने लगे तो जोर से भागने लगा, इतने जोर से भागे थे वो जंगल में चले गए, जंगल से पहाड़ पे चले गए। अरे डरपो कहाँ भाग रहे हो, बड़े वीर समझते हो अपने आप को, सबको परास्त कर चुके हो, कंस को मार चुके हो, लेकिन मुझसे आप डर रहे हो क्योंकि तुम्हारी मुट्ठी मेरे हाथ में है। ऐसे भ्रम के वश होकर वो बोल रहे हैं। और भगवान भागते 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 एक गुफा में घुस जाते हैं, किस गुफा में, जहां पर मुचुकुंद सोया हुआ है। और अभी देखो वो इतने साल से सोया हुआ है तो उसकी दाढ़ी जो है दाढ़ी वो कई मील तक फैली हुई है, उसके नाखून जो है वो कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं, हाथ के और पाँव के, ये भुवे के बाल भी, आंखों के, अपने सर के बाल भी ऐसे बिखरे हुए हैं, कितने साल तक सोया हुआ है वो। तो भगवान क्या करते हैं, अपना उत्तरीय जो है ना उस पर डालते हैं, वो क्या कहते हैं ओढ़नी पांगरून की तरह, और अंदर गुफा में चले जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद कालयावन आता है और देखता है, अरे बड़ा चालाक आदमी है, निद्रा का ढोंग कर रहा है, हाँ लेकिन मैं फंसने वाला नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि ये रूप बदल कर यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए अपनी चादर ओढ़ के सो रहा है। हे उठो, कर लात मारता है उसको। जैसे ही लात मारता है हमारे मुचुकुंद महाराज जग जाते हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो क्रोध भरी आंखों से उसको देखते हैं, जैसे उसको देखते हैं पूरा जल कर भस्म हो जाता है, और जल कर भस्म होने के बाद गुफा में से बाहर आते हैं भगवान और उसको दर्शन देते हैं। उसको दर्शन देकर अति पवित्र हो जाता है मुचुकुंद और इतना प्रसन्न हो जाता है, उसको सब ध्यान में आता है कि क्या हुआ कि मैं इतने युगों से सो रहा हूं यहां पर और मैंने ऐसा वरदान मांग के रखा था, कौन उठाएगा, उठाने को आएगा मुझे, तो ये सारा लीला जो है भगवान ही कर सकते हैं। तो बड़ा ऋणी भाव भाव में आ गया, कृतज्ञ भावना में आ गया कि भगवान मैं तमोगुण में इतने साल से सो रहा था, आपने इतनी दया से इतनी सुंदर लीला को रचा कर आपने मुझे जगाया है, पृथ्वी को एक राक्षस के भय से भी और मुक्त कर दिया आपने मेरे इस वरदान छाप माध्यम से, और मुझे पुनीत कर दिया आपने। तो भगवान कहते वरदान मांगो, तो वो कहते हैं कि आप ऐसे ही खड़े रहो मेरे आंखों के सामने। तो भगवान मुचुकुंद कहते हैं अगले जन्म में मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करता हूं। अगले जन्म में ये मुचुकुंद महाराज जो है वो पुंडलिक बने हुए हैं और उनको भगवान ने यहाँ पर दर्शन दिया है आके। वो जो पुंडलिक की कहानी है वो मैं कल बताऊंगा आपको पूरी तरह से, हाँ क्योंकि सारी कहानियाँ बताऊंगा तो एक साथ दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी, फिर आप पूछेंगे मुचुकुंद कौन था और कालयावन कौन था और वो रुक्मिणी कालयावन को मिली थी क्या, ऐसे पूछेंगे आप जाके कल। और दिंडीराव को कृष्ण ने मारा था कि मल्लिकार्जुन ने मारा था कि विष्णु ने मारा था, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। भगवान की कथा जो है ना बड़ी पवित्र कार्य है। भगवान की कथा सुनने से हमारे भाग्य का उदय होता है। भगवान की कथा सुनने से पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनने से हमारी मति पवित्र होकर भगवान को समझने के लिए योग्य हो जाती है। अतिशय दुर्भाग्य आदमी जो है उसका भी भाग्य का उदय भगवान की कथा सुनने होता है, क्योंकि जैसे धाम भगवान से अभिन्न है वैसे भगवान की लीला भी भगवान से अभिन्न है। तो जब हम भगवान की लीला का श्रवण करते हैं तो साक्षात भगवान के हमारे साथ होने का अनुभव करते हैं। अरे भगवान की पत्नियां जो है ना, ये रुक्मिणी सहित 8 पत्नियां जो हैं वो कुसुम सरोवर चली गई थी रोते रोते भगवान के अंतर्धान होने के बाद कि भगवान चले गए हमको छोड़कर। बड़ी दुखी थी वो, तो वहाँ पर उन्होंने संकीर्तन किया तो वो गुलमलता के रूप में से उद्धव जी प्रकट हो गए और उद्धव जी ने उनको 30 दिन तक भागवत सुनाया। लेकिन इसमें बहुत समर्पक बात यह है कि जिस दिन भागवत सुनाना आरंभ किया उसी क्षण में भगवान की रानियों का विलाप नष्ट हो गया, दुख नष्ट हो गया, पीड़ा नष्ट हो गया, विरह का दुख नष्ट हो गया, क्योंकि भगवान की कथा सुनते ही उन्होंने भगवान के सान्निध्य का अनुभव किया कि भगवान उनके प्रत्यक्ष संग दे रहे उनको। इसलिए इतनी दुखी पत्नियां थी वो, भगवान का विरह में दुखी थी वो। एक क्षण के अंदर भागवत जी का पाठ शुरू करने के एक क्षण के अंदर वो दुख से मुक्त हो गई। इसका मतलब भगवान का जो भागवतम है वो भगवान से अभिन्न है, पहला दूसरा संग उनके चरणों के समान है, तो उन्होंने भगवान के चरणों का संग का अनुभव किया। उसी तरह से हम लोग भी जब भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान के सान्निध्य का अनुभव करते हैं, इसलिए दुख दर्द मिट जाते हैं, पीड़ाएं चिंताएं मिट जाती है और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, आत्म आनंद का अनुभव करते हैं, साथ साथ हृदय शुद्धि का भी अनुभव करते हैं। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो यहीं पर कथा का विश्राम देते हैं और पुंडलिक के कृपा भगवान ने कैसे की उसकी कथा आपको कल सुबह सुनाते हैं। हरे कृष्णा।